ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है। चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए यह विधेयक लाई है। चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। लोकसभा ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। लोकसभा में कल देर रात वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कोच्चि के पास मुनम्बम में ग्रामीणों ने सरकार के समर्थन में पटाखे जलाए और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। 600 से अधिक ग्रामीण अपनी आवासीय संपत्तियों पर राज्य वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ पिछले 5 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों और संगठनों ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लोकसभा में इस प्रस्ताव पर लघु चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत, तृणमूल कांग्रेस की सायानी घोष और अन्य सांसदों ने भाग लिया। इन सभी ने राज्य में जारी हिंसा और वहां के लोगों की मुश्किलों का मुद्दा उठाया। सदन में संवैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य हालात बहाल करने के हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी उच्चतम प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई, दो मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है। पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह रवाना हुए। प्रस्थान के समय अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, संपर्क और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंग तार्न छिनावत्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और मुक्त। इस शिखर सम्मेलन की बात प्रधानमंत्री कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर 3 दिन के राजकीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य सरकार कांचा गाची बोबली में तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम को आवंटित 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई और अन्य कार्यों को आज तक के लिए स्थगित करे। इस बीच राज्यभर में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्र संगठनों ने राज्य सरकार से इस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इन देशों से आयातित वस्तुओं पर 26% शुल्क लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात पर 20% और ब्रिटेन से 10% शुल्क लगाने की भी घोषणा की है, जो अमरीका की 2 मुख्य व्यापारिक साझेदार और सहयोगी देश हैं। भारत पर 26% आयात शुल्क लगेगा। इस बीच दुनिया भर के कई देशों ने इस शुल्क को गलत बताया है। म्यांमा में 7.7 की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,003 हो गई है। करीब 4,500 लोग घायल हैं। इस बीच म्यांमा की सत्ता पर काबिज सेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए देश में चल रहे गृहयुद्ध पर अस्थायी तौर पर विराम लगाने की घोषणा की है। आईपीएल 2020 क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।